تفسير: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اور سوالیہ انداز ہے. اور سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو علم دیا جائے، تیسرا کیا کہ ان کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کیا جائے. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، کن کی طرف؟ اوتو نصیبم من الکتاب، جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. تو یہاں پر اس سے مراد جو ہیں یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ تورات کے حکام میں تحریف کرتے تھے، اس کو تبدیل کر دیتے تھے. جیسے تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پر رجم کا حکم موجود تھا، تو پہلے تو ان کے علماء نے کیا کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کرتا تو مختلف بہانوں سے اس کی سزا ختم کر دیتے، کمزور آدمی اگر کرتا تو اس پر حد جاری کرتے. پھر انہوں نے ایک اور درمیانی راہ نکالی اور یہ طے کیا کہ زانی کی سزا ایسے ہی مقرر کی جائے جو سب کے لیے ایک جیسی ہو. اور وہ سزا کیا تھی؟ زانی مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی کے گرد پھراتے. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا. یہ دونوں شادی شدہ تھے، ان کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح یہ زانی رجم سے بچ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا، تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ وہ فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کرا کے پھر پھراتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے، جو یہود کے علماء میں سے تھے اور اسلام لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ. چنانچہ تورات لائی گئی. پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا. عبداللہ بن سلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو نیچے رجم کی آیت تھی. اس طرح جب علماء کی چوری پکڑی گئی تو ازراہ ندامت وہاں سے اٹھ کر چلتے بنے. اس آیت میں ایسے ہی یہودی علماء کا کردار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اب مقدمے کا فیصلہ ابھی باقی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی اور یہودن کو سنسار کروا دیا. تو اب یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے. تو یہاں پر اس سے مراد جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل کتاب کے وہ علماء جن کے پاس جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا جو ہے وہ حصہ موجود ہے، یعنی جیسے تورات ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انجیل جو ہے اس کا حصہ جو لوگوں کو ملا تھا تو وہ بھی اس سے جو ہے وہ مراد ہے، کیونکہ دونوں میں ہی لوگوں نے جو تھی وہ تبدیلی کر لی. تو ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ خود تو اس نے امیزش کر دی، چینج کر دی، اب قرآن جو ہے وہ حکم بن کر آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بن کر، اور ان کو یدعونا الی کتاب اللہ، یہاں پہ اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، کس لیے؟ لیحکما بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے کسی بھی چیز کا، جو بھی جھگڑا ہے، جو بھی جن چیزوں پر ان کو جو ہے وہ انکار ہے یا جن چیزوں پر ان کو اصرار ہے یا ان کی جو کجروی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تو کیا کرے؟ لیحکما بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. تو ان کا آگے یہود کے علماء ہیں یا इंजील के मानने वाले, जो भी आसमानी किताबों के लोग मानने वाले थे, तो उनकी रविश जो है वो बताई जा रही है कि वो क्या करते हैं। सुम्मा यतवल्ला फरीकु मिन्हुम वहुम मोरिदून, कि उन्होंने अपनी आंखों पर तासुब की, जिद की ऐसी पट्टियां बांधी हैं कि हालांकि तौरात और इंजील में मौजूद है बातें, उसी की कुरान तस्दीक कर रहा है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और इनकार ही करते चले जा रहे हैं। हदायात तालीमात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो कितने ताज्जुब की बात है कि अहले किताब ठहरे और इसके बाद जो है इन्होंने कुरान से जो है वो मुंह इस तरह मोड़ा कि अनजान बन गए इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई। और अल्लाह ताला आगे ये भी बता रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उनका ये मिजाज क्यों है एराज का। वहुम मोरिदून, एक तो है ना तवल्ला के कोई फिर जाए, फिर उसके फिरने की कैफियत ऐसी हो कि बस फिर ही गया। मोरिदून एराज ही की कैफियत है, पलट कर आता ही नहीं है। ये उनका जमाती मिजाज है, ये उनकी रविश है। तो सख्त मलामत अल्लाह ताला कर रहे हैं यहाँ पर कि उनका ऐसा कौमी मिजाज बन गया है। तो उनको तो मलामत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जो है वो तसल्ली भी दिलाई जा रही है, उनको जो है उनको ये बात बताई जा रही है कि ये तो उनकी रविश है, ये उनका मिजाज है, तो आप लोग जो है वो परेशान ना हो। फिर अल्लाह ताला जो है ये बात बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि एराज की कैफियत में रहते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि दोज़ख की आग तो हमें छुए तक ही नहीं, हमें मस्तक नहीं करेगी, और अगर दोज़ख की आग हमको मिलेगी भी तो बस चंद रोज। तो अब जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यहूद जो हैं अल्लाह की किताब में जो तहरीफ करते हैं, या ईसाई जो हैं उन्होंने जो तहरीफ कर ली है, तो अहले किताब के इस रवैये की वजह क्या है, इनके बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में मुब्तिला होने की, इनकी इस दलेरी की, जुर्रत की वजह क्या है। वजह बताई जा रही है, और वजह क्या है कि इनके असलाफ ने एक गलत अकीदा घड़ लिया है। गलत अकीदा क्या है कि वो कहते हैं कि यहूदी जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जहन्नुम की आग उन पर हराम कर दी गई है, और अगर गए भी तो उतने ही दिन दोजख में रहेंगे जितने दिन उन्होंने बछड़े की परस्तिश की थी। और दूसरी बात ये भी थी, वो ये कहते थे कि हम अल्लाह के अंबिया की औलाद हैं, इब्नुल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, चहीते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर लिया है कि इनकी औलाद को सजा नहीं देगा, तो यूं हमें सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह नसारा क्या कहते थे, उन्होंने कफारा मसीह का मसला घड़ लिया, और वो क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुनाहों के कफारा के तौर पर सलीब पर चढ़ा दिए गए हैं, और अपनी उम्मत के गुनाहों का हिसाब उन्होंने सारा खत्म कर दिया, बेबाक कर दिया। अच्छा, मुसलमान भी अब पीछे नहीं है इसी तरह के अकीदे में। कुछ तो ये कहते हैं कि बस कलमा पढ़ा हम जन्नत में जाएंगे, कुछ ये कहते हैं हम सैयद हैं या सैयद बन गए हैं, कुछ ये कहते हैं कि इनकी तो पुश्तें ही सातों पुश्तें पाक है, जो चाहे कर ले। फिर इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि वो बहिश्ती जेवर, बहिश्ती एक तो जेवर है ना, उसको छोड़े, एक कहते हैं बहिश्ती दरवाजा, वो पाक पतन साइड पर एक बहिश्ती दरवाजा है और साल में एक दफा खुलता है, और जो उसमें से उसके नीचे से गुजर जाए, और वजीर भी गुजरते हैं और बड़े बड़े जागीरदार भी, वडेरे भी, जो और आम पब्लिक भी, जब वो खोला जाता है, लोगों का कोई हशर और हाल होता है कि वो उसमें से जो गुजरेगा वो पाक हो जाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएगा, और फिर क्या है कि वो जरूर जन्नत में जाएगा, इसीलिए तो उसको बहिश्ती दरवाजा कहते हैं। तो आप सोच रहे कि किस किस तरह के अकीदे हैं और किस किस तरह की बातें हैं कि फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा। तो ये हैं ख्वाहिशात और ये हैं सस्ती निजात के अकीदे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अहले किताब में से यहूदी ये कहते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात, कि हमें दोज़ख की आग हम तक नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंची भी तो गिनती के चंद दिन। क्यों अल्लाह ताला कहते हैं कि इस अकीदे की फिर इनकी क्या वजह है, وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون, کہ جو انہوں نے گھڑی بھی باتیں ہیں نا, ان گھڑی بھی باتوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے. تو یہ ہے غلط فہمیاں. تو امت مسلمہ کو بھی ان غلط فہمیوں سے نکلنا چاہیے کہ کریں کرائیں کچھ نہیں, عمل کچھ نہ کرے اور انسان جو ہے وہ بیٹھا رہے کہ امید ہے کہ میں جو ہے نہ کسی طرح فلاں کی کو پکڑ کر, فلاں کے ساتھ لگ کر میں بھی جنت میں جو ہے وہ چلا جاؤں گا. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کی منظر کشی اور قیامت کے دن کی بے بسی جو ہے نا, دراصل اس کا ذکر کرتے ہیں, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ, مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے, لا ریب فی, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. زندگی اور موت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ دونوں ناگزیر ہیں. جو شخص بھی اس دنیا میں ایک دفعہ آ گیا اس کو موت کی گھاٹی میں سے گزرنا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آج دنیا میں ہیں, غلط عقیدے ہیں, منمانیاں ہیں, خواہشات ہیں, باتیں ہیں, دعوے ہیں اور رسمیں ہیں, بہت سی غلط چیزیں اختیار انسان نے کر لی ہیں اور اسی کے اندر خوش ہیں. جس کے پاس جو کچھ ہے نا اسی میں وہ خوش ہے. تو کیا ہوگا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, جس دن ہم سب کو جمع کریں گے, اذا جمعناہم, ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے, اکٹھا کریں گے. کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ حساب کتاب کے لیے, ہر ایک سے پوچھنے کے لیے, اس کا محاسبہ کرنے کے لیے. اور وہ دن بھی ایسا ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے وہ دن کا آنا ضروری ہے. اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اس روز ہر شخص کو اس کے کسب کا, اس کی کمائی کا, اس کے عملوں کا, اس کے رویوں کا, اس کی سوچوں کا, اس کی باتوں کا, اس جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یہاں پہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے قانون جزا اور سزا کی وضاحت کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ ہمیں قانون جزا سزا کی وضاحت ملتی ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے. اباؤ اجداد کی نیکی یا بدی اس کے کام نہیں آئے گی. اتنا ہی ملے گا جتنا کسی نے کیا ہے, نہ اس سے کم کیا جائے گا نہ زیادہ. کمی تو کسی صورت نہیں ہوگی. اگر اللہ چاہے تو زیادہ کر سکتا ہے, اس کے عملوں کو بڑھا سکتا ہے. اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, خواہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کیوں نہ ہو. اس سلسلے میں ہمیں قرآن میں مختلف جگہ پر ایسی آیات ملتی ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا, وہ چاہے گا کہ کسی طرح میں اس سے جو ہے وہ بچ جاؤں. سورت عبسہ میں بھی ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, مطلب اس دن انسان اپنے بھائی سے فرار حاصل کرے گا, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے. ہر شخص جو ہے اس دن اس پر عجیب جو ہے وہ حالت ہوگی, عجیب بے نیازی کی کیفیت ہوگی, کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں. اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ لمبی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا کہ مفلس کون ہے, تو کیا کہا تھا صحابہ نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا جواب دیا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو, ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں. आपने फरमाया कि नहीं, कयामत के दिन मुफलिस वो होगा कि जब वो अल्लाह के पास आएगा तो इस हाल में होगा कि उसने रोजे भी रखे, नमाजें भी पढ़ी, यानी इबादत तो उसके पास हैं, लेकिन इसके साथ ही किसी को गाली दी, किसी का खून बहाया, किसी के साथ जबान का गलत इस्तेमाल किया। अब क्या होगा कि ऐसे ऐसा शख्स जो है वो दावा करेगा और इस शख्स की नेकियां उसको बांटी जाएंगी, वहां और कोई करेंसी काम नहीं आएगी, नेकियां बांटी जाएंगी उसके बदले में जिसके साथ उसने ज्यादती की। अब एक वक्त ऐसा होगा उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी उसके गुनाहों का बोझ उस पर है। दावेदार हकदार मांग रहे हैं कि ये भी किया इसने, ये भी किया हमारे साथ, ये भी किया। अब ऐसे में उनको बताया जाएगा इसके पास तो अब नेकी कोई बची ही नहीं कि अब जो है हिसाब किताब मजीद इससे किया जा सके। तो वो शख्स पता है क्या कहेंगे, जो दूसरे लोग होंगे वो कहेंगे कि हमारे गुनाहों का बोझ ही इसके ऊपर जो है वो डाल दिया जाए, इतना सख्त वो दिन होगा। तो यहां पर भी इसी चीज की तरफ जो है वो मतवज्जो किया जा रहा है कि हर शख्स को इसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जुल्म जो है वो नहीं होगा। इस सिलसिले में मुझे वो बात भी बड़ी जो है वो दिल को हिलाती है और अफसुर्दा करती है, और मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि वाकई वो लोग कितने नेक थे, कितने अच्छे थे जो चले गए। कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक दिन पूरी रात जो थे ना इस आयत की हिचकियां लेते रहे, फमन यअमल मिसक़ाल ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यअमल मिसक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराह। पूरी रात ये आयत पढ़ते पढ़ते जाते थे और अपने अपनी दाढ़ी हाथ में पकड़ी हुई थी और रो रहे थे और कह रहे थे कि अनुमान क्या बनेगा उस दिन जब इंसान जो है जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो भी देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी देख लेगा। एक शख्स कहता है कि जब मैं इशा की नमाज से फारिग हुआ तो इमाम साहब इस कैफियत में थे कि ये आयत पढ़ रहे थे और रो रहे थे, जब मैं फजर के लिए नमाज में गया ना तो तब भी उसी कैफियत में बैठे हुए थे और रो रहे थे ना। तो पूरी पूरी रात वो इस पे गुजार देते थे ना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, दिन भर हुकूमत के काम करते, रात के वक्त कोयलों से अंगीठी को दहकाते और फिर उस पर जो है वो अपने हाथ को रखते, अपनी उंगली को रखते और फिर कहते कि तेरे अंदर इतनी सख्त है कि तू जो है वो जहन्नुम की आग में जल सके, तू तो इतनी लो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर कैसे तू अल्लाह की नाफरमानी जो है ना वो कर सकता है। तो अपना मुहासबा करते थे और रात के वक्त गिरियाजारी करते थे। उनकी बीवी से किसी ने पूछा, फातिमा नाम था बीवी का, पूछा कि हमें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का कोई अजीब वाकया बताएं, वो ऐसा वाकया मतलब वो उनकी कोई नेकी का। तो उसने कहा कि वो खुदा की कसम नमाज रोजे में आपसे बढ़कर नहीं थे लेकिन वो अल्लाह से ज्यादा डरने वाले थे। उन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियाद फिक्र आखरत पर अल्लाह के खौफ पर रखी। ये है मुसलमानों की मताए अजीज, ये है हमारी मताए जीस्त। बहुत इबादत, बहुत तस्वीर के दाने गिराना और बहुत से ऐसे हम नेकी के अमल के इस्लाम के शियार करते हैं जिससे लगता है ये बहुत दीनदार है, लेकिन अगर उन शियार के अंदर उनकी तहों में अल्लाह का खौफ नहीं है, आखरत का डर नहीं है, तो फिर क्या है उनका हासिल ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जुल्म जो है वो नहीं किया जाएगा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने इनको नवाजा भी बहुत था और एक दफा जो है वो किसी को कर्ज दिया हुआ था ना, तो आ रहे थे तो गली में उस आदमी को देखा और उस आदमी ने इनको देखते ही रास्ता बदल लिया। वो मकरूज था, उसने देना था, मुद्दत गुजर चुकी थी, तो आप तेज तेज कदमों से उसके पीछे गए और उसको पूछा कि बल तुम मुझे देखकर मतलब मेरा अपना रास्ता क्यों बदल लिया कि तुम मुझे मिलना भी नहीं चाहते। तो उसने बताया कि मतलब मैंने आपका चूंकि कर्ज नहीं दिया हुआ तो मैं शर्मिंदा होता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने तुमने जो मेरा कर्ज देना है ना मैंने तुझे माफ किया और कहा कि मैं तुझसे माफी मांगता हूँ उस शर्मिंदगी की जो तुम्हें मुझे देख कर हुई, तुम मुझे माफ कर दो कि तुम मुझे देख के शर्मिंदा हुए वो मुझे तुम अल्लाह के लिए माफ कर दो और जो कर्ज है ना मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम तो शर्मिंदा करके खुश होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को शर्मिंदा करके खुश हो और उन्होंने कहा कि तुम मुझे उस शर्मिंदगी की ना माफी दे दो। इसको कहते हैं खौफ आखरत, अल्लाह का जो है वो खौफ होना कि इंसान के रवैयों में तब्दीली आ जाए। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में बनू उमैया के काफी देर बाद ये जब बने तो बनू उमैया में बहुत सी बुराइयां आ चुकी थी, काफी ज्यादा बुराइयां आ चुकी थी, और हत्ता के लोगों की उन्होंने काफी जायदाद भी बनू उमैया के बादशाहों के पास थी। जब ये आए तो उन्होंने लोगों में बांटनी शुरू कर दी, बनू उमैया के जो अमीर और बादशाह थे उनमें खलबली मच गई कि ये तो कुछ भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि जायदाद की तकसीम जो भी गलत थी ना सब निकालते जा रहे थे। इनकी फुफ्फो को इनके पास भेजा, रिश्तेदारों को भेजा और कि भी इनको समझाएं, तो इन्होंने कहा कि नहीं। फिर बल्कि उनको कहा कि आप अपने हाथ को अंगीठी पर जलती हुई पर रखें, तो क्या यानी क्या इसको आप जलाने जला सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बर्दाश्त कर सकते हैं इस आग को, तो आखरत में कैसे जो है ना बर्दाश्त किया जाएगा, तो मैं क्यों आखरत जो है उसको बर्बाद कर दूं और जहन्नुम की आग जो है ना उसको खरीद लूं। बड़ा बड़े स्ट्रांग थे अपने बातों में, अपने रवैये में, इसीलिए तो थे कि जब हुकूमत का काम करते थे तो उसका तेल चिराग जलता था और जब अपना करते थे तो उसको बुझा देते थे और अपना करते थे, है ना। आजी भी थी, इनकसारी भी थी, इमानत और दयानत भी थी। जितने भी इंसान के अंदर मोमिनाना औसाफ आते हैं ना वो आखिरत की फिक्र से पैदा होते हैं। आजी है, इनकसारी है, मोहब्बत है, प्यार है, दिल लगी है, हर हर चीज में, वरना तो इंसान तो वाकई तागूत है, शैतान है, तागूत से भी आगे निकल जाता है, सरकशी पे उतरता है, तो इसको इसकी सरकशियों को कौन रोक सकता है, इसकी इसको तूफानों की कैफियत से कौन हटा सकता है। ये अल्लाह का खौफ और आखिरत का खौफ है जो इंसान को जो है एक अच्छा मुसलमान बनाता है, और अल्लाह ताला यहाँ पर इसी चीज की तरफ मतवज्जो करते हैं, और हमें भी इस पर गौर करना चाहिए कि क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस रोज जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। इस रोज हर शख्स को इसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जुल्म जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी अहले किताब इनकार करते हैं, अहले मक्का इनकार करते हैं, मुनाफिक इनकार करते हैं, दुनिया इनकार करती है, तो उनको जरूर सोचना चाहिए कि कयामत के दिन इनके इस इनकार की रविश जो है वो क्या होगी, इनका अंजाम जो है वो क्या होगा। वो योमुल फसल होगा, उस दिन मनगढ़ंत अकीदे बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तो आज रंगरलियां मनाने वाले, मजे करने वाले और ऐसे ही बातिल अकीदों से अपने आप को नेकियों से महरूम करने वाले, उनको जो है वो जागना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। फिर फरमाया आगे दुआ है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कहो खुदाया, मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। अब यहां पर इस आयत से जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वास्ते से उम्मते मुस्लिमा जो है उसको एक दुआ की तलकीन की गई है, और ये दुआ जो है इस आयत में भी और इससे अगली आयत जो है 27 में भी, इसमें उम्मते मुस्लिमा को तसल्ली दी गई है और इसमें एक अजीम बशारत दी गई है। और अगली आयत क्या है, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य فَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ। रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क जो है वो देता है। तो ये दोनों आयतें जो दुआइयां हैं और उम्मते मुस्लिमा को सिखाई गई हैं कि मुश्किलात में, परेशानियों में इनको पढ़ना चाहिए, और जैसे कि गजवा एहजाब के मौके पर ये आयात नाजिल हुई जब चट्टान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तोड़ ली और मुनाफिक और काफिर मजाक उड़ाने लगे, तो अल्लाह ताला ने बेखबर जालिम जो थे उनके जवाब में शायद इन आयतों को नाजिल कर दिया। तो मतलब क्या था इन आयतों के नाजिल करने का कि कौमों के उरूजो जवाल अल्लाह ताला की कुदरते कामिला का एक नतीजा है। कुदरते कामिला के तौर पर जो है ना कौमों के उरूजो जवाल जो है वो वाकया होते हैं। तो कौम आद हो, कौम समूद हो, या कौम फिरौन हो, या फिर अब अहले मक्का, तो ये अल्लाह की मर्जी है जो चाहे करे। चाहे तो फकीरों को, गरीबों को बेताज बादशाह बना दे, उनको तख्तो ताराज का मालिक बना दे, और चाहे तो बड़े बड़े जो बादशाह हैं उनसे हुकूमत और तख्त जो है वो छीन ले। तो आज खंदक खोदने वाले जो बजाहिर फकीर नजर आते हैं, गरीब नजर आते हैं, मिस्कीन हैं, रोटी तक नहीं है खाने के लिए, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, यानी कल ऐसा हो सकता है कि शाम, इराक और यमन की हुकूमत जो है वो अल्लाह ताला मयस्सर कर दे। तो आप देख लें कि ये जो खुशखबरी है, ये जो तसल्ली है, ये जो दुआएं हैं, इससे पहली अजीम बशारत क्या पता चलती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक तरफ तो अहले किताब हसद करते हैं कि इमामत मुसलमानों को क्यों मिल गई, बनी इस्माइल में मुंतकिल क्यों हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बनी इसराइल की मुखालफत जो है वो अल्लाह के फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। इमामत का मुसलमानों को मिलना, खाना काबा की तब्दीली का होना, ये तो अल्लाह की मर्जी है, यानी अल्लाह अपने इक्तदार का मालिक है, जिसको चाहे जो है वो अपनी हुकूमत दे दे, जिसको चाहे इज्जत दे दे, इसलिए कि सारे के सारे खजाने अल्लाह के पास हैं। क्योंकि बनी इसराइल के लोग ये समझते थे हम वारिस हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जिसको चाहूं वारिस जो है वो बना दू, और अल्लाह ताला अपने खजानों का मालिक जो है ना वो खाइन लोगों को नहीं बनने देता। जब कोई खयानत करते हैं ना, अल्लाह उनसे खयानत करने वाले खाइनों से खजानों को छीन कर ईमानदारों के सुपुर्द कर देता है। इसका ये मतलब नहीं कि कहने को मुसलमान समझे कि हम बड़े ईमानदार हैं और अमल उनके ना हो। अगर उनके अमल नहीं होंगे तो अल्लाह ताला मुसलमानों से भी छीन सकता है। फिर दूसरी बात यहां पर क्या है कि बनी इस्माइल के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि इज्जत है, यानी इस आयत में एक बशीर गोई की जा रही है कि अनकरीब मुसलमानों के हालात बदलने वाले हैं। इसराइल के लिए क्या है कि उनके लिए जिल्लत है, तो मुसलमानों के लिए क्या है कि तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें हुकूमत मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी, तुम परेशान ना हो। तो अल्लाह ताला ने दोनों का फैसला बता दिया कि बनी इसराइल के साथ क्या होगा और बनी इस्माइल यानी मुसलमानों के साथ क्या होगा। फिर इसके साथ ही अल्लाह ताला ने जो अहम चीज जिस पर मुतवज्जो दिलाई है, मुतवज्जो किया है मुसलमानों को, वो क्या है कि मुसलमान जो हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को मुसलमान समझकर ही जो हैं वो गुरूर करें, फखर करें, बल्कि क्या है कि उनको इस जिम्मेदारी का हक अदा करना चाहिए, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। तो आप देख लें कि यहां पर जो बात कही जा रही है वो क्या है कि एक तरफ पशीन गोई है और दूसरी तरफ साथ ही क्या है कि जो कुछ भी है, यानी तूतिल मुल्का है या वह तंजिल मुल्का है, वह तो इज्जू मंतशा व तुजिलु मंतशा, ये सब किसके पास है, बियदिकल खैर, तेरे हाथ में है, तो आपके हाथ में हर तरह की भलाई है, हकूमत देना, वापस लेना, इज्जत देना और जिल्लत जो है किसी को जलील करना। तो गोया के जो कुछ भी है वो अल्लाह के पास है। जैसे कि किसी अरबी का मशहूर शायर है मुतनबी, वो कहता है कि मसाइब व कौमिन इंदा कौमिन कौमिन फवाइद, एक कौम के मसाइब दूसरी कौम के फवाइद होते हैं। यानी क्या कि बनी इसराइल शिकस्त खा रहे हैं, हार रहे हैं या जलील हो रहे हैं, तो दूसरी कौम जो है वो इज्जत पा रही है। कहीं जवाल है तो कहीं उरूज है, कहीं रात है तो कहीं दिन है, कभी अच्छे दिन है तो कभी बुरे दिन है। तो असल बात क्या है कि अल्लाह के हाथ में ही सारी की सारी भलाई है। इंसान जब रात की तारीकी देखे, जब गम देखे, जब परेशानियां देखे, जब मसाइल देखे, जॉब नहीं है, बीमारी है, मुसीबत है, मुशक्कत है, दिन गुजरता नहीं है, रात बहुत लंबी भी हो, कितनी ही लंबी क्यों ना हो, बहरहाल वो रात है, गम की रात गुजर ही जाती है ना। तो यहाँ पे जो है जो चीज मतलब जो कर रही है वो क्या है कि इंसान को बताया जा रहा है कि बियदिकल खैर, अल्लाह के हाथ में है खैर, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह ताला की मर्जी, ये सब कुछ अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। तो अल्लाह ही से की तरफ मतवजो होना चाहिए। क्यों? इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो यहाँ पर भी दरअसल जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है वो ये बात बताई है कि वो परेशान ना हो, और आज के इन हालात पर भी ये आयात बिल्कुल पूरी फिट बैठती है कि मुसलमानों को ये आयात पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इनफरादी जिंदगी में भी कोई मसला हो, मुश्किल है, परेशानी है, औलाद के लिए, जॉब के लिए, कोई मुसीबत है उससे निकलने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, घर चाहिए, कोई भी मसाइल हैं, तो ये आयतें बहुत अच्छी हैं कि अल्लाह ताला की किबरियाई है, अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह ताला की खुदाई का बड़ा खूबसूरत अंदाज में एतराफ है, और अल्लाह ताला की रहमत जो है इस तरह जोश में आती है। इसी तरह फिर आगे फरमाया कि तूलिजुल्लैला फिन्नहारी व तूलिजुन्नहारा फिल्लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, रात को दिन में पुरोतावा ले आता है और दिन को रात में जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को। तो आप देख लें कि जैसे गुठली होती है ना, तो गुठली पे जान होती है, उसमें खजूर निकल आती है, उसमें आम पैदा हो जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह से जो ये है ना कि बेजान से जानदार चीज आ गई, और फिर आम के अंदर गुठली है और खजूर के अंदर क्या है, गुठली है, उसके अंदर फिर बेजान चीज है। इसी तरह आप ले सकती हैं जैसे अंडा है, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से फिर अंडा, है ना, उसके अंदर जो है एक बेजान चीज है। इसी तरह नुतफा बेजान होता है, उसे जीता जागता इंसान जो है वो बन जाता है। इसी तरह आप देखें सर्दी है तो फिर गर्मी है, बहार है तो फिर फिजां है। तो अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में भी किसी को औलाद दे सकता है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में तो दी थी, याकूब अलैहिस्सलाम को भी बुढ़ापे में ही दी थी, है ना। तो बाज़ूकात बहुत से साल गुजर जाते हैं, इससे पता है क्या चलता है, मायूस नहीं होना चाहिए हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। और अब आप देखें कि जदीद दौर की जदीद बीमारियों की डिप्रेशन, अच्छे भले जवान खूबसूरत पढ़े लिखे खाते पीते जॉब्स वाले लोग और डिप्रेशन, और उसमें वो करते क्या है। मैं कई ऐसे अब लोगों को जानती हूँ, माँ भी है, बेटियां भी हैं, लड़की है, शादी होके आई। अब फितरी सी बात है कि जब इंडिया पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं तो अकेला जोड़ा, घर वालों को छोड़कर, जगह छोड़ी, घर छोड़ा, स्कूल कॉलेज दोस्त अहबाब सब कुछ इंसान जब छोड़कर आता है बिल्कुल तन्हाई हो जाती है। उस वक्त एक तरफ तो घर, गाड़ी, खाना पीना, फ्रिज, चीजें सब जरूरियातें जिंदगी हैं ही, इसके अलावा जो भी लोग इमिग्रेंट या नए लोग मुसलमान यहाँ पर आते हैं, बाकी सारे मुसलमानों की जरूरत है कि उनको उनको कंपनी दे, अच्छी दोस्ती दे, क्योंकि इंसान ना मिस बहुत करता है, चीजों को याद बहुत करता है। मैं पढ़ रही थी मुसलमानों की तारीख, तो उसमें हजरत बिलाल रजी अल्लाह के बारे में था, वो मक्का को बहुत याद करते थे, बहुत उदास होते थे, तो कहते थे कि हवाएं भी चलती हैं ना तो मुझे मक्का की याद दिलाती हैं, कि उस तरफ से जब हवा आती है ना तो मुझे मक्का जो है वो याद आता है। और वैसे भी आबो हवा का फर्क भी था, मक्का से मुसलमान जब मदीना गए बीमार हो गए, वो ज़रात पेशा इलाका था, लोग ज़रात का खेती बाड़ी का काम करते थे, उनको वो आती भी नहीं थी, तो याद करते थे मक्का को मुसलमान ना। और मैं सोचती हूँ उन्होंने तो अल्लाह के लिए छोड़ा था ना। हम तो चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहती ये गलत है, अगर अच्छे फ्यूचर, आपका अच्छा फ्यूचर होगा तो इस्लाम का अच्छा फ्यूचर होगा, आप अच्छे कामयाब होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे तो इस्लाम का फ्यूचर जो है वो अच्छे हाथों में चला जाएगा। अगर हम मुसलमानों की जनरेशन जो है या मुसलमानों के बच्चे जो है पढ़े लिखेंगे, तो बहरहाल नीयतों को दुरुस्त करना और अपने आप को तालीम से आरास्ता करना के सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी बनती है अगर किसी के पास औलाद नहीं है, तो उसको तसल्ली देना, मुसलसल तसल्ली। अगर वो तसल्ली में है तो इबादत है, अगर वो मायूस होता है तो कुफर है, किसी के पास जॉब नहीं है तो उसको तसल्ली हो, और दूसरे का काम है उसको तसल्ली देना कि इंशाल्लाह दिन बदल जाते हैं, हालात अच्छे हो जाते हैं, आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे हालात बदल जाए देंगे। बाज़ औक़ात कई कई दिन गुजरते हैं, बाज़ औक़ात कई महीने और कई साल भी गुजर जाते हैं एक उम्मीद पर ना। तो असल चीज क्या है कि ईमान है ही यकीन और ना यकीनी की कैफियत के दरमियान की कैफियत को कहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहते थे ना, अगर आसमान से ये आवाज आए कि सारे जो है वो जहन्नुम में जाएंगे, एक ही जन्नती है, मैं सोचता हूँ हो सकता है वो उमर ही हो रजी अल्लाह अन्हु, और अगर ये आवाज आए कि सारे जो है वो जन्नती है, एक जहन्नमी है, तो सोचता हूँ कहीं वो उमर ही ना हो, पता नहीं कोई ऐसी गलती ना हो गई, कहीं वो उमर ही ना हो। तो कितनी उनकी अच्छी कैफियत थी ना, ईमान जो है वो उम्मीद और नाउम्मीदी की दरमियानी कैफियत। तो यहां पर भी हमें जो चीज सिखाई जा रही है कि इज्जत है या जिल्लत है, और बादशाहत है या महरूमी है, अंधेरे हैं या रोशनियां हैं, बहार है या खिजां है, बीमारियां हैं या सेहत है, औलाद है या नहीं है, जॉब है या नहीं है, दिन बुरे हैं या अच्छे हैं, लोगों कभी मायूस ना होना, कभी मायूस नहीं होना। और मोमिन के पास तो ईमान की जो दौलत है वो इतनी मजबूत है, इतनी कवि है, वो मायूस हो तो हो क्यों, वो क्यों मायूस हो। तो यहां पर भी यही बात जो है बताई गई है, क्या तरज़ुकु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, के वो जिसको चाहता है रिज्क देता है और बगैर हिसाब के देता है। तो यहां पर भी जो ये अल्लाह ताला ने एक तरफ तो ये बताया कि कायनात के निजाम से गवाही दी है अल्लाह ताला ने, दिन और रात और जिंदा और मुर्दा की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने कायनात के निजाम से ये बात बताई है कि रात और दिन को तब्दील कौन करता है, जिंदा को मुर्दा में, मुर्दा को जिंदा में तब्दील कौन करता है, ये तो अल्लाह ही का इख्तियार है ना। तो तुम लोगों अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से अपना अपनी लौ लगाओ। ये बहुत खूबसूरत तशबीह है, किस तरह आप देखें कि रोशनी होती है लेकिन रोशनी तारीकी में छुप जाती है, पूरे तसलसल से चक्कर लगाता है ये सूरज चांद जमीन, तो आपस में ये अयामे जो गर्दिशे लैलो नहार हैं वो होते रहते हैं। तो यहां पर भी जो बात बताई जा रही है कि आज जिंदगी है तो मौत भी आएगी, मरोगे भी, फिर हिसाब किताब भी होगा। आज रोशनी है तो रात भी होगी, और रात है तो फिर रोशनी भी होगी, खजान है तो बहार भी होगी। तो होना, आज हम जवान है तो कल बूढ़े भी होंगे, है ना। तो फिर करना क्या चाहिए कि हमें जो है वो हिम्मत पकड़नी चाहिए, और इसी तरह जो है ये भी सोचना चाहिए कि आज अगर मुसलमानों का, इस्लाम का पौधा जो है वो परेशान हाल है या उस पर जो है तूफान आया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो सरसब्ज होगा, वो तनावर दरख्त बनेगा, फलेगा, फूलेगा, उसकी उसकी उस पर बहारें आएंगी। आज अगर मुरझा रहा है वो, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुरझाया नहीं है, तो मुसलमानों को एक उम्मीद बांधनी चाहिए, एक उम्मीद की कैफियत में आना चाहिए। और अल्लाह ताला जो बगैर हिसाब के रिस्क देता है, इससे मुराद क्या है, एक तो ये है कि कसरत से देता है जिसको चाहता है। बाज़ औक़ात कुछ हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं, अल्लाह उनको बहुत नवाजता है, अनपढ़ हैं और बहुत अच्छा उनका काम हो रहा है। बाज़ औक़ात पीएचडी लोग हैं, बहुत स्पेशलिस्ट हैं, बहुत लाइसेंस वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, है ना। तो ये अल्लाह की मर्जी है कि बेहिसाब जो है वो देता है, इसकी कोई कोई ये नहीं है कि कोई बकायदा इसका तरीकेकार है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। दूसरी बात जो पता चलती है वो क्या है कि बाज़ औक़ात अल्लाह उस तरह से देता है जिसका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। यर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरत तलाक की आयत 65 है कि वहां से रोजी देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो ये दोनों बातें जो है यहां इससे मुराद है। मैं तो अक्सर इस बात से सोचती हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको उठाकर अंधे कुएं में डाला, पानी वाले कुएं में भी नहीं डाला कि कोई पानी लेने आएगा तो इस बहाने इसको निकाल ना ले, अंधे कुएं में डाला। गयाबतिल जुब का लफ्ज आता है सूरत यूसुफ में, अंधा कुआं, गयाबत गैब से है, इसी से गीबत भी है, कोई होता नहीं तो उसकी बात करते हैं ना, अंधा कुआं। और अल्लाह ताला ने फिर भी लोगों को वहां भेज दिया कि जाओ, उन्होंने ऐसे ही भटका भूला एक काफला उधर गया कि हम पानी ले लें, और वहां पे जो था वो यूसुफ अलैहि सलाम मिल गए और वहां से उठाकर मिस्र के तख्त पर उनको बिठा दिया। और फिरौन के साथ क्या किया कि उसको उसको लाओ लश्करों समेत पानी की लहरों के सपोर्ट कर दिया। मक्का वालों के साथ क्या हुआ कि जिनको जिन मुसलमानों को उन्होंने निकलने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा, कोई भी ऐसा गजबा नहीं है कि मुसलमानों ने आके मक्का पे चढ़ाई की हो, है ना, यही जाते रहे और मुसलमान अपना डिफेंड करते रहे। हत्ता कि फिर फतेह मक्का जब हुई तो उसमें जंग तो नहीं थी ना, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है वो जीत दे दी फतेह मक्का के मौके पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बाज लोगों के घरों में हालात अच्छे नहीं हैं, घरों में मसाइल हैं, किसी भी तरह से शौहर की तरफ से, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की तरफ से, अपनी बीमारी की वजह से, सेहत की वजह से, औलाद ना होने की वजह से, बेटा ना होने की वजह से। बाज घरों में ये मसला है कि बेटी यहां क्यों है, बेटा क्यों नहीं है। अक्सर लोग मुख्तलिफ तरीके से दुआओं के लिए कहते हैं, तो इसमें क्या बात है कि परेशान नहीं होना। वतरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। तो मैं सोचती हूँ कि कुरान को अगर पढ़ते रहे ना, मताला करते रहे, तो एक जैसे एनर्जी आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, जैसे होता है ना थेरेपी की जाती है, क्यों होती है ये, ताकत के लिए ना। तो कुरान की आयात थेरेपी का काम करती है ना, मसाइल को हल करती हैं, एक हिम्मत देती हैं, एक लगता है फिर जवान हो गए, ढहरे होते हैं, परेशान हाल होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम भी अब जवाब देंगे, हम भी अब खूब सुनाएंगे, एक नहीं 10 सुनाएंगे, खूब अच्छी प्लानिंग करते हैं। अब देखना, अब जब सुबह हुई ना, अब देखना, फिर कुरान से गुजर गए, फिर ऐसे हो जाते हैं कि चुप ही लग गई, गुमसुम हो गए, है ना। फिर सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो है जी, हाँ नहीं, सबका ही होता है, हम सबका, कि असल में ये मुसलमान जो है ना, ये अगर कुरान का मतलब करते रहे तो हकीकत ये है कि ये इंसान के लिए बड़ी सआदत की बात है। हम इन चीजों को मसाइल समझते ही, मसाइल है नहीं, असल मसला तो ये है कि अल्लाह के यहाँ जीत और हार किसकी है, अल्लाह के यहाँ कामयाब और नाकाम कौन है, असल कामयाब कौन है, असल मसला तो ये है। हमने छोटे छोटे वो गुड़िया गुड्डे का खेल बचपन में हो खेला करते थे, हमने उन खेलों को ना अपनी जिंदगी की हकीकत समझ लिया। और चूंकि इंसान है, भोलनहार है, खूब समझते हैं, खूब याद करते हैं, फिर जब उतरते हैं ना तैरने के लिए तालाब में, पानी में, तो फिर तैराकी भूल जाते हैं। गाड़ी चलाने खूब आती है कि कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे बैठना है तो बेल्ट लगानी है, और कैसे जो है वो सिग्नल देना है, और कौन सी लाइट ऑन करनी है, और क्या करना है, पीछे मुड़ना है, जो भी है सारा कुछ हम सीखते हैं। लेकिन जब बैठते हैं तो पहली दफा फेल, दूसरी दफा फेल, तीसरी दफा फेल, है ना, लोग फेल होते चले जाते हैं, उनको कमी नहीं होती आने की, इल्म की कमी नहीं होती। तो बात क्या है कि इल्म तो है, अमल नहीं है हमारे पास ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उसके लिए क्या है कि कुरान से ताल्लुक मजबूत जोड़ा जाए, और इसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं मोमिनों को, मुसलमानों को, कि इनफरादी जिंदगी है या इज्तमाई, यानी कौमी लिहाज से भी और इनफरादी लिहाज से भी, कि तुम्हारी दोस्ती किससे होनी चाहिए, तुम्हारा दोस्ती का मायार क्या होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि ईमान और मोहब्बत इलाही का तकाजा क्या है। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरूना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। फरमाया मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाए। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाता वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा वइलल्लाहिल मसीर। जो कोई ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ ये माफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। तो आप देख लीजिए कि ये आयात जो हैं ये बहुत अहम हैं, और मुसलमानों को हदायत की गई है कि ए मोमिनो ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरूना औलिया, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाना। इसमें अगर कोई इसकी मुखालफत करे तो उसके लिए बड़ी सख्त वईद है। तो अब आप देख लें कि शायद पाकिस्तान में रहते हुए ये आयतें इतनी समझ में ना आती, और जब मुल्क से बाहर निकले और मुख्तलिफ तरह के लोग हमारे साथ हैं, जैसे इंडिया के मुसलमान जब वहां रहते हैं तो मुख्तलिफ दीन रखने वाले लोग उनके इर्द गिर्द हैं। अब यहाँ पे आप रह रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में, बर्तानिया में, दुनिया के उन ममालिक में जहां पे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, तो यहाँ पे अब इन आयात को समझना और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे भी, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ के तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है, इसमें क्या हर्ज है कि अगर वो हमारे जो है वो दोस्त हो। तो जहां तक है जाहिरी दोस्ती, उसमें वो तो उस हद तक तो जायज है, मगर जो है वो भी बगैर जरूरत के पसंदीदा नहीं है। और ये दोस्ती जो है, ये भी जो होती है ना गहरी दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये दिली दोस्ती, वो जो है उसे अल्लाह ताला ने मना किया है। कुरान में हमें बहुत सी जगह पे इस तरह की आयात मिलती हैं कि जिसमें इस चीज की तरफ जो है वो मुतवज्जो किया गया है। जैसे आप देखें कि हमें सूरत मुमतहिना में ये मिलता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, ए ईमान लाने वालों, मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन यानी काफिर को अपना दोस्त ना बनाओ, तुम इनको पैगाम भेजते हो दोस्ती के। यानी दोस्ती जब करने से मना किया गया, तो आप सोच लें कि शादी निकाह फिर है ना, इसका क्या जो है वो हाल है और क्या इसका मकाम है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला सूरत मुमतहिना के आखिर में कहते हैं वमन यफअलहु मिनकुम फकद दल्ला सवा असबील, कि जिस शख्स ने इससे दोस्ती की तो वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। फिर इसी तरह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सूरत मुजादला में कहते हैं कि आप ना पाएंगे किसी कौम को जो यकीन रखते हो अल्लाह और आखिरत के दिन पर कि वो दोस्ती करे ऐसे लोगों से जो मुखालफत है अल्लाह के और उसके रसूल के। यानी दूसरे लोग तो दोस्ती नहीं करेंगे, खा वो अपने बाप दादा ही उनके क्यों ना हो, या अपनी औलाद, या अपने भाई, या अपने खानदान वाले। यानी काफिर लोग अपने घर वालों से भी दोस्ती नहीं करते अगर उनके घर वाले का, घर वालों का मजहब जो है वो तब्दील हो जाए। अच्छा, यहाँ फिर एक सवाल पैदा होता है कि फिर हमारे ताल्लुकात जो हैं इनके साथ कैसे होने चाहिए। तो इस सिलसिले में जो बातें याद रखने की हैं वो ये हैं कि एक दर्जा है दोस्ती का जो होता है कल्बी मुआलात, यानी दिली मोहब्बत का। मुआलात वली से ही है, मीम वो अलिफ लाम अलिफ ला, जैसे मौला लिखते हैं ना, मौला के बीच में अलिफ डाल दे, मवालात और बड़ी ता। जहां तक ताल्लुक है ना कल्बी मुआलात का या कल्बी मुद्दत और मोहब्बत का, तो ये तो सिर्फ मोमिनों के साथ मखसूस है। दिली मोहब्बत कतन किसी गैर मोमिन के साथ जायज नहीं है। दूसरा दर्जा है मुआसात का। मुआसात कैसे लिखना है, मीम वो अलिफ सीन अलिफ सा और फिर ता, मुआसात, यानी हमदर्दी और खैरखाही। तो ये जो है ना, ये गैर मुस्लिमों के साथ भी की जा सकती है। जैसे होते हैं ना कि अब मसलन बाज लोग अब इससे ये ना समझे कि अब जो काफिर है उनसे नफरत करनी है, ये मतलब नहीं है। मसलन आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, काफिर ही की गाड़ी का हुआ है, तो गाड़ी रोकनी चाहिए, 911 कॉल करना, उसकी मदद करना, जो कुछ भी सही मुनासिब तरीका है, या और कोई गरीब है, कोई भूखा है, कोई जरूरतमंद है। पीछे आपने पढ़ा था ना कि हदायत तुम नहीं दे सकते, यानी वो सहाबा ये सोचने लगे थे कि सिर्फ मुसलमानों को ही खैरात करनी चाहिए, गैर मुस्लिमों पर वो नहीं करते थे, तो कहा कि नहीं, हदायत तो अल्लाह देता है कि वो मुसलमान बनते हैं कि नहीं बनते, लेकिन तुम इंफाक के मामले में उनकी भी मदद जो है वो कर सकते हो। तो दूसरा दर्जा है मुआसात का, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके साथ जो है वो एहसान का सलूक किया जा सकता है, नेकी की जा सकती है। तीसरा दर्जा है मदारात का, मदारात नीम दाल अलिफ रा अलिफ ता, मदारात खातिर मदारत। अब बोलती है ना कि वो हम उनके घर गए, बड़ी उन्होंने खातिर मदारत की, इसका क्या मतलब होता है कि किसी के साथ जो है वो दोस्ताना बर्ताव करना, अच्छा मामला करना, तो मेहमान के साथ या दूसरे तीसरा जो भी आदमी है, तो ये जो है ये तीसरा दर्जा है। तो अब इसमें अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि ये भी की जा सकती है गैर मुस्लिमों के साथ, मतलब उनको खिलाना है, पिलाना है, या और कोई चीज है तो मेहमान बन जाए वो हमारे। जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक काफिर जब मुसलमान बना, तो आपने उसकी कितनी खातिर मदारत की, उसने इतना खाया कि पेट ही खराब हो गया। तो असल बात क्या है कि ये जो मदारात है ये की जा सकती है, लेकिन ये के साथ ही आगे अल्लाह ताला ने ये बात भी बता दी। पहले तो ये कहा कि उनको छोड़कर जो है वो दोस्ती नहीं करनी है ना, तो साथ ही ये बात भी बता दी कि यानी उनके फितने से बचने के लिए, जैसे बाज़ औक़ात मुसलमान अब यहाँ रह रहे हैं तो उनको हिकमत के साथ किस तरह रहना है, ये बात है। ये आगे अभी भी आप पढ़ेंगी कि इल्ला तत्तकु मिनहुम तुक़ाता, कि तुम उनसे बचना बचने के लिए कोई रवैया इख्तियार करो। कहते हैं चौथा दर्जा मामलात का है, जैसे तिजारत है, बिजनेस है, जॉब है, तो ये भी तमाम गैर मुस्लिमों के साथ जायज हैं। हालात के मुताबिक मुसलमान उनके साथ कर सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, खुलफाए राशिदीन ने भी और दूसरे सहाबा ने भी जो है ये मामलात किए हैं। लेकिन कहते हैं कि वो काफिर जो मुसलमानों से जंग करते हों तो उनके हाथ असलहा फरोख्त नहीं करना चाहिए, क्या कि वो खरीद कर मुसलमानों पर ना इस्तेमाल करें। बाकी तिजारत जो है उसकी इजाजत है और उनको मुलाजमत दी जा सकती है, उनकी मुलाजमत ली जा सकती है, लेकिन ऐसी मुलाजमत जिसमें मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचे। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने एक लड़का था और वो जो है वो लिखने का किसी गवर्नर के पास काम करता था, जैसे मुंशी नहीं होता लिखता है, आपने मना कर दिया था। क्यों मना किया? जॉब तो दी जा सकती है, मैंने भी कहा कि इससे मुसलमानों के राज ना बाहर चले जाएं, अंदर है ना, ये वही बात हो गई। तो इससे इसका जो है वो ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, फिर इसी तरह यानी इन सारी अगर जैसे मैंने आपको एक दर्जा बताया मुआलात का, दूसरा मुआसात का, तीसरा मदारात का, चौथा मामलात का है ना, और अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो दो जुमलों में यूं है कि इनके साथ कल्बी दोस्ती और मोहब्बत तो जायज नहीं है, लेकिन इनके साथ हुस्ने सलूक करना, हमदर्दी करना, बिजनेस या नफा जो उनको पहुंचाना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाए। वमन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकाता, जो ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ ये माफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बजाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो काफिरों के पास कहीं जो है फंस गया है और उनकी तरफ से जुल्मों सितम का खौफ है, तो फिर इजाजत है कि मुसलमान अपने ईमान को छुपा ले या काफिरों के साथ बजाहिर इस तरह से रहे जैसे कि उन्हीं का आदमी है, यानी अपनी जान बचाने की खातिर। ये जो है इससे मुराद ये है कि जान बचाने की खातिर कि काफिरों के साथ वो जो है दोस्ताना रवैया इख्तियार करें। तो अगर किसी की जान को खतरा हो तो कलमा कुफ्र तक कहने की इजाजत है कि हाँ, मतलब कि दिल से इंसान जो है वो मानता ना हो लेकिन जबान से बस उस वक्त की हालत के लिए परेश बचने के लिए उसने कह दिया। ये किस सहाबी की मिसाल मिलती है? हजरत हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अम्मार रजी अल्लाह, शाबाश। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु का क्या मामला था कि उनके वालिद और उनकी वालदा को दोनों को तकलीफें अजियतें दे देकर शहीद कर दिया गया और अब इनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, और ये रोते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि उन्होंने मुझे मारा और किसी तरह उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक के, वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहो ना, कि जब तक मैंने आपको अल्लाह को इस तरह बुरा ना कह दिया। तो आपने फरमाया कि तुम अपने दिल की कैसी कैफियत पाते हो, कहा कि मैं जो है ईमान पर मुतमिन हूं, तो कहा फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। समझ आई बात की, कि उस कैफियत से मुसीबत से निकलने के लिए। बोस्निया का एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है, खलील हामदी साहब शहीद हो गए थे रोड एक्सीडेंट में, बड़ी किताबें अरबी की का उन्होंने तर्जमा किया और मुख्तलिफ जगह के दुनिया में वो उन्होंने उनके कई सफरनामे भी हैं। तो एक दफा बहरीन में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, तो उन्होंने उसमें एक बात बताई थी कि बोस्निया जब वो गए तो वहां एक कैंप में एक मुसलमान डॉक्टर को उनको मिलने का इत्तेफाक हुआ, जिसके शौहर इंजीनियर थे। तो कहते हैं कि आपको पता ही ना, सर्बों ने जब जंग की तो मुसलमानों को इतना मारा पीटा, ईसाई थे वो, और मुसलमानों को जब मारा तो क्या था कि वो मियां बीवी दोनों गुजर रहे थे, तो सर्ब ईसाई ने कहा कि तुम जो है वो अल्लाह का इनकार जो है वो करो ना, तो अकीदे तसलीस के मानने वाले थे, तो बीवी से पूछने लगे कि क्या करूं। तो कह बीवी ने कहा कि जो मुनासिब समझे ना, तो एक हाथ खड़ा कर दिया, एक उंगली, इस तरह एक उंगली खड़ी की, तो बीवी के सामने ही शोहर को फिर उसने गोली मार दी और वो तड़प तड़प कर जान दे दी। अगर वो तीन उंगलियां खड़ी कर देते तो फिर वो कुछ ना कहते है ना, वो तसलीस, क्योंकि अकीदा तसलीस का मतलब क्या था कि तीन उंगलियां करो, उन्होंने एक उंगली की, उसकी बात नहीं मानी। और बीवी ने नहीं कहा कि, हालांकि जायज था जान बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा पसंद किया कि मैं क्यों जो है मैं कहूं कि तीन खुदा है, खुदा तो एक ही है ना, तो एक उंगली बस खड़ी की ना। तो कहते हैं कि वो डॉक्टर जो मुसलमान औरत, वो जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, जो अपने मुसलमान सर लोगों के हाथों जो जख्मी और मुख्तलिफ तरीके से, और बड़े फख्र से अपने शौहर का ये वाकया लोगों को सुनाती थी कि मेरे शौहर इस तरह से जो है ना वो शहीद हो गए। तो इसी तरह यानी मक्की दौर हो या आजकल के दौर, मुख्तलिफ हालात ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर जो है मुसलमानों को ये बात बताई जा रही है कि अगर कहीं हकीकी खतरा है तो तहफ्फुज़ के लिए, बचाव के लिए जो है फिर ऐसा मामला किया जा सकता है, तो लेकिन उसको ईमानदारी से सोचना चाहिए। और वो क्या है, वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, कि अल्लाह अपने आप से उसको डराता है, यानी असल डर तो अल्लाह का डर है। क्यों, इंसान को जब भी ये सोचे ना कि हाँ मैं तो मौका मौका शनास हूं, हालात के मुताबिक मैं ऐसा कर रहा हूं, तो उस वक्त उसको ये बात सोचनी चाहिए कि वा इल्लल्लाह अल मसीर, कि इंसान जो है वो जो कुछ भी कर रहा है तो अल्लाह ताला को तो उसके दिल के हालात ख्यालात सब अच्छी तरह पता है ना। जिस अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है वो इस पर कादिर है कि अगर इंसान काफिर के डर से तो मुसलमान ना रहे, लेकिन अल्लाह के डर से जो है वो अल्लाह के डर का उसको ख्याल ना हो, है ना। बाज़ औक़ात फरेब देता है इंसान अपने आप को, वो ऐसी कैफियत नहीं होती जैसे हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु के माँ बाप दोनों शहीद कर दिए गए, है ना, ऐसी कैफियत नहीं होती, लेकिन इंसान जो है वो कहता है कि मेरी मजबूरी है, जैसे नमाजें छोड़ दी, नाम बदल दिया, सारी चीजें मेरी मजबूरी है, ये मेरी जॉब की मजबूरी है, तो ऐसा नहीं होता। यानी पेट से नहीं सोचना चाहिए, ईमान से सोचना चाहिए। और ईमान से सोचना क्या है कि फितना और शर से बचाने की कुव्वत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह कोई और राह पैदा कर देगा। तो मुसलमानों को कुफ्र की बजाय ईमान को अपने दिल में जगह देनी चाहिए, सोचना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो है मुसलमानों को छोड़कर काफरों से दोस्ती ना करो, अल्लाह को ये बात जो है वो पसंद नहीं है। तो इसके बाद जो है, क्योंकि यहां पर भी आप देख लें कि वली का लफ्ज है, वली कौन होता है, दोस्त है, मददगार है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जायज ही नहीं है कि इंसान जो है वो दूसरों को, मुसलमानों को छोड़कर दूसरों को अपना दोस्त और रफीक बनाए। इससे हमारे लिए ये भी असूल निकलता है कि हम जरूर इस बात का जायजा लिया करें कि बच्चों की दोस्ती किससे है, उठना बैठना किससे है। क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जो है वो देख ले कि किसको अपना दोस्त बनाता है, कि उसका ईमान जो है वो अपने दोस्त के दीन पर है। जैसा साथी होता है ना, उसकी उसके असरात इंसान पर आते हैं। तो हमारे शोहर हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, जब बाहर जाते हैं तो इस बात का उनको अंदाजा होना चाहिए कि किसको उन्होंने दोस्त जो है वो बनाया है, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसके पास ज्यादा वक्त जो है वो गुजार रहे हैं, इसके असरात आते हैं। फिर फरमाया कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यालमुल्लाह, के कह दीजिए कि खा तुम कुछ छुपाओ या तुम उसे जाहिर कर दो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खबरदार कर दीजिए कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है बहरहाल अल्लाह उसे जानता है, यानी दिलों की हर बात जानता है, खा तुम इसको छुपाते हो या जाहिर कर देते हो। इससे मुराद क्या है, दरअसल ये बात कही जा रही है कि जब आसमानों जमीन की खुदाई अल्लाह की, इज्जत अल्लाह के पास, जिल्लत अल्लाह के पास, सब कुछ अल्लाह के पास है, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बात मत भूलना कि तुम बजाहिर कह रहे हो कि मेरी मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ये बात मत भूलना कि अल्लाह ताला जो है तुम्हारी एक एक चीज को जानते हैं, तुम्हारे एक एक रवैये को जानते हैं, जो कुछ भी तुम जाहिर करते हो और जो कुछ भी तुम जो है वो छुपाते हो, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह के सामने हैं। जब अल्लाह के सामने हैं तो इंसान को क्या चाहिए कि अल्लाह को राजी करने की फिक्र करनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मेरे इस मेरे अमल का नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि दुनिया से इंसान छुपा सकता है ना, लेकिन अल्लाह से इंसान छुपा नहीं सकता। मा फी सुदूरिकुम, जो कुछ भी दिलों में है, अच्छा है तो भी अल्लाह को पता है, बुरा है तो भी अल्लाह को पता है ना। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत सी बातें ये कहते हैं कि हमारी ये मजबूरी है, हमारे ये हालात हैं, मेरी ये जॉब की मजबूरी है, इसलिए मैं जो है वो अब ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। जैसे कहते हैं कि एक दफा सर सैयद अहमद खान को किसी ने खत लिखा और कहा कि मेरी ये मजबूरी है कि मेरी जॉब की वजह से जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज के लिए मुश्किल है। तो कहा कि तुम ऐसी जॉब पर ना दो हरफ लिखो, यानी इस्तीफा लिखो, और लानत ऐसी पर जो इंसान को अल्लाह की नमाज से, इबादत से जो है वो रोक दे। तो बहरहाल मैं ये सोचती हूँ इस बात पर कि एक तो ये है कि नमाज बाजमात, बहरहाल यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं, मसाजिद होती है, इजाजत होती है तो लोग नहीं जाते, और वरना तो ब्रेक जो होती है मुख्तलिफ जॉब के दौरान ब्रेक होती है, अगर जमात से नहीं, वैसे तो नमाज पढ़े ना, तो वैसे भी लोग नमाज नहीं पढ़ते कि फिर काफिर पूछते हैं कि वो पढ़ता है आप नहीं पढ़ते, वो जो है कहते हैं ये ठीक है। और जैसे भी हमारे बेटी के स्कूल से लेटर आया था कि ये लेटर में ये था कि जो है वो डांस की इजाजत है कि नहीं, म्यूजिक और डांस वगैरह की, तो हम कहने लगी कि जब हमारी वो टीचर आया तो मैंने उसको बताया कि मुझे अलाउ नहीं है, तो उसकी क्लास में 10-12 और बच्चे भी हैं, कहती है कोई भी और नहीं बोला, मुसलमान बच्चे 10-12 और हैं क्लास में ना और बाकी दूसरे हैं। तो कहने लगी कि जब मैंने ये कहा तो फिर उन्होंने कहा कि आप सब, फिर उन्होंने एक लेटर घरों में सबके भेजा, कहती एक क्रिश्चियन ने भी मामा उसमें यस किया है कि हम, मुझे भी इजाजत नहीं है, एक क्रिश्चियन ने भी ये लिखा है कि हमें भी इसकी इजाजत नहीं है। तो असल बात यह है कि जब इंसान जो है वो कोशिश करता है, समझाता है, बताता है तो है, वरना हमें तो पता ही नहीं, हमारे बच्चों को भेज दिया पीली बसों में बिठाकर और क्या किया हमने, बाय बाय किया, और हम खुश हो गए, मुतमिन हो गए, लंबी सोए, खाएं पिए, मजे करें, फिर वो आएंगे तो देख लेंगे कि क्या किया उन लोगों ने। फिक्र नहीं है कि बच्चे वहां पे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर जो है बाद में जो दोस्तियों के असरात आते हैं, वो अहमद शहाब स्कॉलर हैं एक, उन्होंने कहा ना कि मुझे फोन आया, 18 साल का किसी का लड़का था और आदमी का फोन आया, वो रो रहा था कि अहमद शहाब कम, कि मेरे माई सन इज बीटिंग मी, कि मेरा बेटा मुझे मार रहा है। तो एक तो यह है कि बकायदा मारना, और दूसरा यह है कि जो है वैसे भी मारना, जबान का गलत इस्तेमाल, वालदेन की इज्जत ना करना, इंतराम ना करना, तो ये सब हैं दोस्ती के नताएज और समरात और असरात, और जिस पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वयालमु मा फिस समावाती व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि जब अल्लाह ताला को आसमान और जमीन की हर चीज का पता है तो तुम्हारे दिल के अंदर क्या है उसका नहीं पता होगा, कि मजबूरी है या तुम ये कि फरार कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो अपने आप को खामखा। बाज लोग वाकई मजबूर होते हैं और बाज लोग जो है ना फरार की कैफियत में होते हैं, बहानेबाजियां करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदं बईदा। फरमाया कि वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा। ये आयतें बड़ी सख्त हैं, हमें हिलाती हैं, और हमें जो है मुतवज्जो करती हैं कि इंसान तूने कभी इस बात पर सोचा भी, तू जरा इस बात पर गौर तो कर कि वो वक्त भी आने वाला है, वो दिन भी आने वाला है कि जब जो है हर नफ्स अपने किए का फल, अपने जो भी उसने अमाल किए हैं उसका रिजल्ट जो है वो अपने सामने हाजिर पाएगा। अब देखें आप लोग टेस्ट करते हैं ना, और जब अच्छा होता है तो इंतजार होता है कि कब मिलेगा, जब गलतियां होती हैं तो चाहते हैं कि दिया ही ना जाए ना, है ना, दिल ही नहीं चाहता कि रिजल्ट दे भी आए। तो क्या है, खाना अच्छा पका लें तो दिल चाहता है कब खोलें कब दें सबको, और जब उसमें कुछ कमी बेशी हो जाए, नमक ही नहीं डाला भूल गए, जल ही जाए, कोई और गलती हो जाए, तो देश का खोलने को दिल नहीं चाहता। मेहनत बड़ी की होती है, अफसुर्दा भी होते हैं लेकिन करें क्या, है ना, अफसुर्दगी सी एक होती है, कपड़ा सीने लगे काटने लगे तो खराब हो गया, परेशानी है, अच्छा काटा सिया तो दिल चाहता है कि पहने, हर कोई देखे के भी कि तुम तो बताना चाहते हैं कि मैंने सिया है इसको, जब कोई तारीफ, जब कोई देखता है तो तारीफ चाहते हैं और कहते हैं कि मैंने किया है। तो यानी दुनिया में भी अच्छी चीजों का हम क्रेडिट चाहते हैं और बुरी चीजों को समेट देना चाहते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, खा इसने भलाई की हो या बुराई, वमा अमिलत मिन सू, अच्छा किया है या बुरा, दोनों तरह का जो है ना वो उसको हाजिर पाएगा। तो क्या करना चाहिए, ये आयत हमें क्या पैगाम देती है, ये आयत जो है हमारी गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे डालती है, हमें गफलत की नींद से बेदार करती है, कि हमें चुकन्ना हो जाना चाहिए, मोहतात हो जाना चाहिए, बी केयरफुल। जैसे गाड़ी चलाने वाला जो है ना बहुत अटेंटिव रहता है कि जरा सी उसकी लग्जिश, जरा सा आंख का लगना, जरा सी उसकी भूल उसको उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, किसी और की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है ना, बहुत मोहतात होते हैं ना। तो इसी तरह एक मुसलमान को भी मोहतात होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए कि कहीं अल्लाह की नाफरमानी जो है वो ना हो जाए। मुझे बड़ी अच्छी मिसाल लगती है ये वाली कि जैसे वो कहते हैं कि एक जमाने में औरतें पानी बाहर से लेकर आती थी ना भरकर, तो वो पगडंडी पे चलती थी और घड़ा सर पर रखा होता था, और यानी हाथ भी ऊपर नहीं होता था, तो क्या करती थी कि उनको पगडंडी बड़ी बारीक सी होती है, वो बारीक सा रास्ता होता है, और आम बंदा हम तो हर शख्स नहीं चल सकता, वो कुछ लोगों को उसकी बड़ी अच्छी अंदाजा होता है, आदत होती है, वरना आप पौ रखे तो आप दूसरे खेत में चले जाते हैं, फिर पौ रखते हैं दूसरी साइड के खेत में चले जाते हैं, तो वो उस पर रखकर सर पर वो घड़ा और बगैर हाथ रखे वो चलते हैं, लेकिन उनको इतना एक तवाजुन आ जाता है ना कि उनका घड़ा फिर भी गिरता नहीं, पानी से भरा हुआ या लस्सी से भरा हुआ या दूध से भरा हुआ है ना। तो जो मोमिन होता है ना बिल्कुल इसी तरह से नपी तुली बात करता है, नपे तुले कदम रखता है, कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। और बाज औकात आपका मतलब नहीं होता कि कोई गलत बात करना, बस बात के कहने में कुछ ऐसी कमी बेशी हो जाती है कि दूसरा शख्स गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है, हालांकि आपका मकसद ये नहीं था, और आपको बाज औकात बात पता भी नहीं होती है ना। तो यहाँ पे इस चीज की तरफ मतवज्जो किया जा रहा है कि इंसान को जो है वो अपने अमाल पर गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ताकि उसके अमाल इतने अच्छे हों कि अल्लाह के हाँ फिर उसको कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदं बईदा, उस दिन इंसान ये तमन्ना करेगा काश अभी ये दिन इसे बहुत दूर होता, यानी बुरा दिन हो तो इंसान चाहता है ना कि इसे बुरा दूर हो, तो ये तमन्ना करता है इंसान। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वयुहज्जिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, क्यों डराता है कि अमल अच्छे करो, बुरे अमल करो ही क्यों कि फिर शर्मिंदा होना पड़े, फिर अफसरदा होना पड़े, फिर जहन्नुम में जाना पड़े, तो अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, हालांकि अल्लाह है कैसा, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और वो तो अपने बंदों का निहायत खैरखा है। क्या है यहां अल्लाह की खैरखाही, कि कबल अज वक्त तुम्हें डरा रहा है, कबल अज वक्त तुम्हें तुम्हारे अमाल पर मुतनब्बे कर रहा है, जैसे मां ही बच्चे को कहती कि पढ़ लो कल को ख्वार ना होना, है ना, कल जब तुम अनपढ़ रहोगे और फिर धक्के खाओगे तो माँ उसको बार बार मतवजो करती है, बच्चे को बाप बार बार मतवजो करता है, बच्चा है कि असर ही नहीं करता, तो वक्त से पहले किसी को बता देना कि ऐसे कर लो वरना कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अल्लाह अपने बंदों का जो है वो निहायत खैर खा है, अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। और ये पूरी आयतों को इकट्ठा अगर किया जाए जो अभी तक पढ़ी है, तो उससे एक बात तो ये पता चलती है कि दोस्ती मुसलमानों से होनी चाहिए, काफिरों से गहरी दोस्ती दिली दोस्ती नहीं हो सकती। और वैसे उनके साथ हुस्ने सलूक किया जा सकता है, और बाकी रही जाहिरी और बातनी अमाल तो अल्लाह की नजरों से वो पोशीदा नहीं रह सकते। अल्लाह ताला को खूब पता है कि इंसान जो है वो क्या कर रहा है। और दूसरी चीज जिसकी तरफ ये आयात बता रही है कि हमें जो है वो जो कुछ भी करें, हमें अपने अमाल की बुनियाद अकीदा आखिरत पर रखनी चाहिए कि आखिरत में हमारा क्या बनेगा। किसी में ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को नहीं बुला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। फिर जो है इसके बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए सही रविश बताई है, और वो सही रविश क्या है कि फिर दोस्ती किससे करो, फिर मोहब्बत किससे करो, फिर किसके असरात कबूल करो। قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ قل اطیع اللہ والرسول، ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی شفقت کا انداز ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، ہے نا؟ تو محبت کا انداز ہے کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی، انسان کے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ پہلی آیت میں ایمان کی اصل روح اللہ کی محبت ہے۔ ایمان کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ لوگوں تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور پھر محبت کی شرط کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی محبت جمع نہ ہونے پائے جو اس کی ضد ہو۔ اور اللہ سے محبت کا واحد راستہ، ایک طریقہ، ایک راستہ بتایا گیا، ون ہائی وے ہے اونلی، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کا اتباع۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی ہائی وے ہیں یا جتنے بھی اسے وہ نکلتی ہیں ایگزٹ، وہ ساری کی ساری ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں۔ اور ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بننے کا راستہ رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ کی زندگی سے، آپ کے اسوے سے اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں پھر بھی اللہ کا محبوب ہوں، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے نا؟ تو دوسری آیت، اگلی آیت جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو دین کا کم از کم مطالبہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور اگر کوئی شخص یہ مطالبہ پورا نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو پھر وہ شخص دین کا ہی منکر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر اللہ تو ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بہت سی ایسی آیات بھی ملتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت جس نے کی، اس نے گویا کہ رسول کی اطاعت کی، ہے نا؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث سے اور صحابہ کے واقعات سے کہ اس کو کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور اللہ ہم سے محبت کرے، تو ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اور اصحاب صفہ کا کیا حال تھا؟ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، ہر صحابی آپ پر جان فدا کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی تو عجیب کیفیت تھی کہ وہ آپ کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے باہر، कि कहीं कोई काम हो, कोई बात हो तो रसूल अल्लाह मुझे बताएं। वुजू का पानी तहज्जुद के लिए भी आपको देते थे। तो एक दिन जब इन्होंने पानी दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए रबिया बिन काब असलमी, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच कर बताता हूँ। अगले दिन फिर पूछा तो इन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा दे और जन्नत दे और जन्नत में आपका साथ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि और कोई ख्वाहिश? कहा कि बस यही ख्वाहिश है ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम सजदों से मेरी मदद करो, यानी कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। क्या मतलब था? कि मैं तुम्हारी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम भी नमाजें पढ़ो और दुआ करो ताकि अल्लाह ताला ये दुआ जो है ना कबूल कर ले। और ये इनकी हाल क्या था? गरीब बहुत थे, शादी नहीं की थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करते? आप पसंद नहीं करते थे कि कोई जो है वो तजर्रुद की जिंदगी गुजारे। तो इन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना है भी नहीं कि मैं शादी की जिम्मेदारी अदा कर सकूं, और दूसरा मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मुझे अपनी तरफ इतना मतवजो कर ले, मसरूफ कर ले कि फिर मैं मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है ना उसको तवज्जो ना दे सकूं या मोहब्बत ना कर सकूं। तो अजीब उनका अंदाज था ना कि हर वक्त रसूल अल्लाह के दरवाजे पर मौजूद, और मांगा भी तो क्या मांगा। आप सोचें कि उनको दुनिया में थे लेकिन आखिरत की फिक्र थी, हालांकि दुनिया की जिंदगी गुर्बत में गुजर रही थी। कुछ और भी तो मांग सकते थे ना, हालात बदल जाएं, हीरे मिल जाएं, और पहाड़ सोना बन के मिल जाए, है ना, खूबसूरत बीवी मिल जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। मांगा तो क्या मांगा? जहन्नुम की आग से रिहाई और जन्नत, और जन्नत में रसूल अल्लाह का साथ। फिर इसी तरह एक सहाबी थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आपने कहा कि जूते उतार कर लोग जो है वो बैठे, तो उन्होंने जूते भी लोगों ने उतारे। अब रसूल अल्लाह ने जो है वो नमाज जब खत्म की तो एक तरफ तो आप जैसे खुतबा देते हुए कहा कि बैठ जाएं, तो वो सहाबी अभी जूते उतार रहे थे और वो वहीं बैठ गए जूतों में। तो आपने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बैठ जाओ, तो मैं उसी जगह उसी हालत में जो है ना वो बैठ गया। ये था लोगों की अताअत करने का अंदाज। फिर इसी तरह एक वाकया मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, अगर खुरैम असदी के बाल लंबे ना होते और तहमत दराज ना होता, यानी तहमत जो है वो टखनों से नीचे ना होता, तो बहुत अच्छा आदमी था खुरैम असदी। एक सहाबी के बारे में फरमाया कि उसके उनके बाल बहुत लंबे थे। कहा कि अगर उसके बाल लंबे लंबे ना होते और तहमत टखनों से नीचे ना होता तो बहुत अच्छा आदमी था। अब ये बात वो रसूल अल्लाह की महफिल में मौजूद नहीं थे, किसी सहाबी ने जाकर जब उनको बताई तो उन्होंने छुरी लेकर कानों तक अपने बाल काट लिए और तहमत निस्फ पिंडलियों तक ऊंचा कर दिया। सुना कि रसूल अल्लाह ने बस ये बात कही है, फौरन उसके मुताबिक जो है ना वो अमल कर लिया। फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ हाथ के बारे एक आदमी के बारे में आपने देखा कि उसने सोने की अंगूठी देखी उसके हाथ में, आपने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया कि तुम में से कोई सोने की अंगूठी पहन कर गोया आग के इंगारे का इरादा करता है। रसूल अल्लाह के जाने के बाद इस आदमी से किसी ने कहा अंगूठी उठा लो और इससे कोई दूसरा फायदा हासिल कर लो, यानी अपनी बीवी बहन को दे दो, फरोख्त कर लो कुछ भी। उस सहाबी ने कहा अल्लाह की कसम जिस अंगूठी को रसूल अल्लाह ने फेंक दिया है इसे कभी नहीं उठाऊंगा, हालांकि वो सोने की अंगूठी थी। और आज हमारे यहाँ हमारी जिंदगी का जो सबसे अहम मौका होता है दुल्हा, उसको लोग सोने की अंगूठी पहनाते हैं, मुसलमान पहनाते हैं, हालांकि मर्द के लिए सोना हराम है ना। हम कहते हैं इसमें हरज ही क्या है। अभी पिछले दिनों एक शादी पर किसी ने जब सोने की अंगूठी का मुझे पता चला तो मैंने कहा कि आप सोने की अंगूठी ना दें, अगर बहुत ही शौक है देने का तो डायमंड की दे दें, हीरे की दे दें, वो तो गलत नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो हमने तो देनी है, अब ये जो भी रस्म है बाद में वो अपनी बीवी को दे दे, वो कुछ भी कर ले, हमने तो ये देनी है, इसमें क्या हरज है ना कि दे दे, वो ना पहने हम जरूर देंगे। तो गोया कि आप दे ही क्यों, तो आप दे ही क्यों ना, जो काम अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया। फिर या चांदी की दे दें, ना दें चांदी की दे दें ना दें, लेकिन हमारा हाल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। इसी तरह मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के वाकयात तो बहुत से हैं, जैसे हमने भी खुद अपने बना लिए हैं, खुद ही तरीके बना लिए ना सुन्नत से हटकर। जैसे आज के दौर में आप देखें कि बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीकों से, अभी रबीउल अव्वल का महीना जैसे गुजर रहा था, चल रहा था या चल रहा है, तो उसमें क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं ना, कितने जश्न के अंदाज में मनाया जाता है, और कई चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हैं, और लोग सुनने को मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी तरह ना। तो ऐसे में दिल कितना अफसुरदा होता है कि कुरान की तालीमात एक तरफ हैं और मुसलमानों का तर्ज अमल जो है वो एक तरफ है, लेकिन अल्लाह के नबी के सहाबा कैसे थे, जब कोई बात उनके सामने आ जाती थी तो आगे बढ़कर उस पर जो थे वो अमल करते थे। इसलिए मुझे ये वाक्या बड़ा अच्छा लगता है कि तीन आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल मालूम करने के लिए आए आपकी बीवियों के पास। ये लंबी हदीस है, मैं आपको उसका निचोड़ बताती हूँ। तो बताया गया कि जब अजवाजे मोहतरात ने बताया ना कि आपकी इबादत की मिकदार क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कम इबादत है, कम समझाओ, कहा कि क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनसे हमारा क्या मुकाबला, उनसे ना तो पहले गुनाह हुए ना बाद में, और हम मासूम नहीं, इसलिए हमें ज्यादा इबादत करनी चाहिए। चुनाते उनमें से एक ने ये तय कर लिया पूरी रात नफल पड़ेगा, दूसरे ने कहा हमेशा नफली रोजे, तीसरे ने क्या कहा यानी नफली रोजे रात में, दिन में खाना नहीं खाना, उस सहाबी ने कहा। तीसरे ने कहा कि वो औरतों से अलग रहेगा, शादी नहीं करेगा। आपको जब इसकी इत्तला मिली तो आप खुश हुए? नहीं, आपने कहा कि तुम ही लोग हो जिन्होंने ऐसा और ऐसा कहा है। फिर आपने फरमाया बिला शुबा तुम में से ज्यादा अल्लाह से मैं डरने वाला और उसकी नाफरमानी से बचने वाला हूं, लेकिन देखो मैं कभी नफली रोजे रखता हूँ और कभी नहीं रखता, इस तरह रात भर नवाफे भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और देखो मैं बीवियां रखता हूँ, सो तुम्हारे लिए खैरियत मेरे तरीके की पैरवी में है, और जिसकी निगाह में मेरी सुन्नत की वुकत नहीं, जो मेरी सुन्नत से बेरुखी बरते उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, फत्तबिउनी, जो अल्लाह के रसूल का इत्तबा करेगा तो अल्लाह उससे जो है वो मोहब्बत करेगा। इसी तरह आप देख लें कि किस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के सहाबा की जहनी जहनियत जो थी ना उसको दुरुस्त किया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे में तुम्हारे लिए जो है वो बेहतरी है। फिर इसी तरह मुझे ये बात भी लगती है, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अनहो के पास रसूल अल्लाह आए, और हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा कि हमको यहूदियों की कुछ बातें बड़ी अच्छी मालूम होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या राय है, क्या इनमें से कुछ हम लिख लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम भी गुमराही के खड में गिरना चाहते हो, जैसे यहूदों नसारा अपनी किताब को छोड़कर खड में गिर गए, मैं तुम्हारे पास वो शरीयत लाया हूँ जो सूरज की तरह रोशन और आईने की तरह साफ है, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी पैरवी करनी होती। लकद जिअतुकुम बिहा बैदा नकिया वलौ कान मूसा हय्यम्मा वसअहु इल्ला इत्तबाई। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मतलब भले से वो कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन फी जमाना मौजूदा यानी जो भी मुसलमान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्लाम के जो भी तौर तरीके हैं, कुरान है, हदीस है, उस पर अमल करें। किसी भी मजहब की कोई भी चीज कितनी अच्छी क्यों ना लगती हो, तो हमें उसके मुताबिक जो है वो अमल नहीं करना चाहिए। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा कि तुम में से कोई शख्स मतलूबा दर्जे का मोमिन नहीं हो सकता, ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैही मिन वलद मैं वालिद ही व वलद ही व नास अजमाइन, के जब तक मैं उसकी निगाह में उसके बाप, उसके बेटे और उसके सारे इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने क्या जवाब दिया, कहने लगे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे सारी दुनिया से बढ़कर अजीज हैं, मैं आपसे सारी दुनिया से बढ़कर मोहब्बत करता हूं पर अपनी जात से बढ़कर नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उमर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जात से बढ़कर मुझे न चाहने लगो। और कहते हैं एक लम्हा की देर के बगैर, एक लम्हा के तवक्कुफ के बगैर फौरन कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपनी जात से भी बढ़कर जो है ना वो मोहब्बत करता हूँ। और एक और वाक्या है, यानी हम इत्तबा रसूल अल्लाह का कैसे करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं वो जितनी भी हमें पता चल जाए उन सब पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी हम कर सकें। और लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी सुन्नत थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या थी, आपको किस बात की फिक्र रहती थी? लोगों की हदायत की उनको फिक्र रहती थी। आप हर वक्त ये चाहते थे कि लोग जो है वो मुसलमान कैसे हो जाएं। और आप देखें तो सही कि एक दिन रसूल अल्लाह की खिदमत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु हाजिर थे, कहते हैं कि आप मिंबर पर बैठे थे, मुझको मुखातिब करके फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने हैरत और अदब से पूछा, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, हालांकि आप पर तो ये कुरान उतारा गया। आपने फरमाया, हाँ मैं चाहता हूँ कि अपने अलावा किसी और से ये कुरान सुनूं। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं कि मैंने सूरत निसा पढ़नी शुरू की, यहाँ तक कि मैं इस आयत पर आया, फकैफा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद शहीदा। आयत नंबर 40 सूरत निसा के, उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और तुमको इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। आवाज आई, अब्दुल्ला अब बस करो। कहते हैं, मैंने निगाह उठाकर देखा तो आपकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। बुखारी की ये रवायत है, मुस्लिम और बुखारी की। यानी क्यों आप रो रहे थे? ये आपकी उस जिम्मेदारी का गहरा एहसास था जिसने आपके दिल को पिघला दिया और आंखों को नमनाक कर दिया कि लोगों को जो हक की गवाही देनी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। आप रोने लगे, आपका दिल आंखों के रास्ते बहने लगा जिसने आपकी दाढ़ी मुबारक को भी तर कर दिया ना। और आप सोचें कि ये आपकी इंसानों से मोहब्बत थी और अल्लाह का खौफ था, और इसी उसवा में अब मेरी और आपकी जो है उसकी हमारी निजात हो सकती है कि हम इस पर चलें। और हम ये देखें कि कितनी दफा ऐसा होता है कि हम जो हैं रात की तारीकी हो या तन्हाई हो या दिन का उजाला हो, खलवत हो या जलवत, और हमारी आंखें भी आंसुओं से भर आती हों कि अल्लाह जब हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे ना। इर्द गिर्द इंसानियत है, बिखरी हुई है, आग में जा रही है, और हम अपनी जिंदगी, अपनी जो भी हमारी मर्जी की जिंदगी है उसको जो है हम गुजार रहे हैं ना। और फिर दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना उनसे, ये बहुत जरूरी है। यानी सबसे बड़ा उसवा आपका यही था जिसके लिए कि लोग हदायत पा जाएं, और इसके लिए हमें जरूर वक्त निकालना चाहिए। जो सीखे, जो आप क्लास में सीखे दूसरों को बताएं, जो कुरान पढ़े दूसरों को सिखाएं, घर के अंदर अपने बच्चों को जब भी जैसे भी जितना भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, क्योंकि हम बात तो करते रहते हैं ना। कभी ऐसा हुआ कि हम खामोश रहे हो? कभी चुप नहीं करते ना, बोलते हैं ना मुसलसल। तो फिर क्यों ना हक बोले, ठीक बोले, और मौके की मुनासिबत से बोले, और जब मौका मिले तो उसमें कोई कमी बेशी ना करें। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक बात और बहुत अच्छी लगती है उस पे अमल करने के एतबार से, और वो क्या बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ना नरमी और मोहब्बत करने वाले बहुत थे, लोगों की जो गलतियां थी उससे दरगुजर करने वाले थे, बड़े शफीक मुअल्लम थे। आप मस्जिद नबी में मौजूद हैं, सहाबा आपके इर्द गिर्द हैं जो जान तक निसार कर दे। एक बद्दू आया और जो फर्श है वो पत्थरों का है, और उसने खड़े होकर पेशाब शुरू कर दिया। मस्जिद में पेशाब, लोग दौड़े कि इसको रोके, शायद के मार डालते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, गोया कि वो अपनी हाजत पूरी कर ले। जब वो फारिग हो गया तो आपने इसको अपने पास बुलाकर बहुत शफकत से समझाया कि मस्जिद एक पाक जगह है, यहाँ पेशाब करना मना है, ये अल्लाह की याद, नमाज और कुरान पढ़ने की जगह है। फिर आपने अपने साथियों से कहा, इस पर पानी का एक डोल डालकर पाक और साफ कर दो, तुमको नरमी करने वाला बनाया गया है, ना कि सख्ती और तंगी करने वाला। फिर एक शख्स पानी का डोल लाया और गंदगी को धोकर साफ कर दिया गया। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। लोग हमारे चारों तरफ गलतियां करते हैं, हम इस्लाह का काम करते हैं ना, और हम लोगों को तालीम देते हैं, तो क्या हमारे अंदर भी सब्र और तहम्मुल की और शफकत और रहमत की कोई झलक है जो अल्लाह के नबी के इस नमूने में हमें नजर आ रही है? हैं? हम सख्ती की तस्वीर बनते हैं या तंगी की? हम जो है हम अपने अंदर नरमी लाते हैं अपने रवैये में, वुसत लाते हैं, या ये कि उजड़पन और गवारपन ले आते हैं, एक बद्दू बन जाते हैं, है ना। और दूर ना जाएं, अपना घर, अपने बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, कि हमारे अंदर नरमी होनी चाहिए। तो असल बात क्या है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह की जो है वो मोहब्बत मिल जाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना चाहिए। और अगर हमने रसूल अल्लाह का इत्तबा ना किया, अगर आपकी पैरवी ना की, तो हम खा कितनी ही दावे करें आपसे मोहब्बत के सब झूठे हैं। अगर हमारी जिंदगी जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक नहीं है, तो मोहब्बत के दावे करने से जो है वो अच्छा मुसलमान नहीं बना जा सकता, जब तक कि मोहब्बत जो है वो अतात के रंग में रंग ना जाए। आप किसी से भी कहें मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ और उसके लिए जरा सी कुर्बानी या उसका ख्याल करने को तैयार ना हो, तो वो उस मोहब्बत को मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो इसी के साथ जो है वो आज की बात को हम खत्म करते हैं और इस बात पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करे जिन जिनको अल्लाह ताला कहता है कि फाइन तवल्लौ फाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि कुफ्र करने वाला है, कुफ्र करने वाले हैं। और उम्मत मुस्लिमा का हाल तो ये है कि ना सामने कोई मंजिल ना रास्ता मालूम, ना राहजनों की खबर है ना रहनुमा मालूम, ये क्या मकाम है अपना नहीं पता मालूम, ये क्या जमीन है आखिर ये कौन सा गर्दू, मैं एक नात कहूँ सोचता हूँ कैसे कहूँ। तेरे मकाम की अजमत भुला के बैठे हैं, तेरे पयाम की शमे बुझा के बैठे हैं, तेरे निजाम का खाका उड़ा के बैठे हैं, जमीर शर्म से पुरदाग तलब है महजूब, मैं एक नात कहूँ सोचता हूँ कैसे कहूँ। तो अमल के लिए क्या सूर मिलता है तुझे, तो क्या तेरे जलवों की जोबी पा ना सके जो जिंदगी को तेरी राह में लुटा ना सके। यानी जब तक हम अल्लाह की अतात ना करें, हयाते शौक भी एक सज्दाए मसलसल है, सरे नियाज झुकाया तो फिर उठा ना सके। मेरी नजर में वही सर है, सर जिसे आमिर जमाना काट तो डाले मगर झुका ना सके। तो ऐसे तौहीद के तौहीद से मोहब्बत करने वाले, आखिर से मोहब्बत करने वाले सर जो सहाबा के सर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, और आज उम्मत मुस्लिमा को और इस्लाम को ऐसे ही सरों की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।